दिन भर सोमवार 28 सितंबर मैं हूं रेहान फतल। नरेंद्र मोदी कैलिफोर्निया का दौरा पूरा कर न्यूयॉर्क पहुंचे, आज मिलेंगे बराक ओबामा से। इस बीच संयुक्त राष्ट्र का 70वां अधिवेशन शुरू।
What counts now is a translating promises on paper into change on the ground.
भारत ने पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट का आज सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।
हिंदुस्तान अब अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान के बाद चौथा ऐसा देश बन जाता है जिसके पास अपना एक एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट अंतरिक्ष में है।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। न्यूयॉर्क में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ओबामा की द्विपक्षीय मुलाकात में चरमपंथ से निपटने के अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से भी मुलाकात की है। मोदी संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून द्वारा दुनिया भर के देशों के नेताओं के सम्मान में आयोजित एक भोज में भी हिस्सा लेंगे। सीरिया में चल रहे संघर्ष का मुद्दा न्यूयॉर्क में राजनयिक गतिविधियों में मुख्य रूप से छाया हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ सीरिया से जुड़े अपने प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। रूस ने पहले ही सीरिया पर एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क समूह बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें रूस के साथ अमेरिका, ईरान, तुर्की और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को शामिल करने की बात कही गई है। अमेरिका में CBS और PBS टीवी नेटवर्क को दिए गए एक इंटरव्यू में पुतिन ने कहा कि सीरिया में रूस की सेना उतारने की योजना नहीं है। रूस सीरिया या किसी भी अन्य देश में किसी भी जमीनी जंग में शामिल नहीं होगा। हमारी अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति असद और दूसरे देशों में अपने सहयोगियों के साथ कर रहे अपने कामों को आगे कैसे बढ़ाएं। ये थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने इस बीच सीरिया में युद्ध खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहली जिम्मेदारी युद्ध में शामिल पक्षों की है जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की 70वीं महासभा की शुरुआत में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी अपनी जिम्मेदारी उठाने को कहा। बान की मून ने रूस, अमरीका, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की से समझौता करने के लिए कहा है। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाली सैनिक गठबंधन के हवाई हमले में एक शादी के समारोह पर बम गिरने से करीब 27 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यमन के सरकारी अधिकारियों ने दक्षिण पश्चिम में स्थित गांव में हुई बमबारी को एक गलती बताया है। कई महीनों से सरकार समर्थित सैनिक गठबंधन ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर निशाना साधा है। अफगानिस्तान के सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि सैकड़ों तालिबान लड़ाकों ने अन्य विद्रोहियों के साथ कुंदूस शहर के आधे इलाके पर कब्जा कर लिया है। कुंदूस उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित है और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि लड़ाकों ने दक्षिण में सड़कें बंद कर दी है, जिससे काबुल से सुरक्षा बलों को मदद पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का 70वां अधिवेशन शुरू हो गया है, जिसमें दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि भाग लेने पहुंचे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कैलिफोर्निया का 2 दिन का दौरा पूरा कर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। आज उनकी बराक ओबामा सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात होनी है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी ने की रिपोर्ट भेजी है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें अधिवेशन में अब भाषण का सिलसिला शुरू हो चुका है।
What counts now is a translating promises on paper into change on the ground. We owe this and much more to the vulnerable, the oppressed, the displaced and forgotten people in our world.
इस वर्ष इस अधिवेशन में सीरिया का मुद्दा, खासकर चरमपंथी गुट आइसिस या इस्लामिक स्टेट के बढ़ते खतरे से निपटने के तरीकों पर और सीरियाई शरणार्थियों के मुद्दे पर भी अधिक जोर दिया जा रहा है। और इस सिलसिले में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भाषण पर भी सबकी नजर लगी है। पुतिन 10 वर्षों के बाद इस वार्षिक अधिवेशन को संबोधित कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथ, खासकर सीरिया और इराक में चरमपंथी गुट आइसिस के खतरे से निपटने के लिए अपनी पॉलिसी का खुलासा कर सकते हैं। हाल ही में रूस ने सीरिया में अपने टैंक, लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य साजो सामान ये कहकर भेजा है कि वो वहां आतंकवाद से लड़ने में मदद करेगा, लेकिन अमरीका को रूस के इस कदम से नाराजगी है और उसका कहना है कि रूस की सैन्य उपस्थिति सीरिया में चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई नहीं बल्कि सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल असद को समर्थन देने के लिए है। इसी सिलसिले में व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की बैठक भी होनी है। आज पुतिन के अलावा अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भी महासभा को संबोधित करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री भी कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क वापस आ गए हैं। आज उनकी सबसे अहम द्विपक्षीय मुलाकात है अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ। इस मुलाकात के दौरान जिन मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है उनमें आतंकवाद से निपटने के अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी करने के उपायों पर भी चर्चा की उम्मीद है। पिछले हफ्ते कैरी सुषमा मुलाकात में अमरीका ने भारत से आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर कार्रवाई करने का वादा किया था। इसमें खासकर पाकिस्तान के चरमपंथी संगठन लश्कर ए तैयबा और अन्य गुटों से क्षेत्र को खतरे और पाकिस्तान द्वारा मुंबई हमलों के जिम्मेदार लोगों को सजा दिए जाने की मांग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। मोदी और ओबामा के बीच मुलाकात में भी चरमपंथ के मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद है। दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासचिव बैन की मून द्वारा विश्व भर के नेताओं के सम्मान में आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से भी मुलाकात की है। संयुक्त राष्ट्र के शांति कायम करने के मिशन से संबंधित एक बैठक में भी भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति फौज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को ही न्यूयॉर्क से स्वदेश रवाना हो जाएंगे। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
आज सुबह नमस्कार भारत कार्यक्रम में आप कुछ तकनीकी कारणों से ब्रजेश उपाध्याय से हो रही बातचीत नहीं सुन पाए, इसका हमें खेद है। और अब एक दूसरा विषय। तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान के रणनीतिक लिहाज से अहम कुंदूज शहर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है। चरमपंथियों ने कुछ वक्त के लिए एक अस्पताल पर भी कब्जा कर लिया। शहर में सेना और चरमपंथियों के बीच संघर्ष चल रहा है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हैं और लोगों को घर छोड़कर सड़कों पर आना पड़ा है। संघर्ष में दोनों पक्षों को नुकसान की खबर है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के सार के साथ वात्सल्य राय।
अफगानिस्तान के उत्तरी शहर कुंदुज पर आज तालिबान लड़ाकों ने जोरदार हमला किया। चरमपंथी मुख्य रास्ते से शहर में दाखिल हुए, उसके बाद उन्होंने चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया। बीते कई सालों में ये कुंदुज पर हुआ सबसे जोरदार हमला है। काबुल में मौजूद बीबीसी संवाददाता के मुताबिक तालिबान लड़ाकों ने कुंदुज के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। कुंदुज अफगानिस्तान का पांचवां सबसे बड़ा शहर है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चरमपंथियों ने शहर के मुख्य चौराहे पर झंडा लगा दिया है। तालिबान लड़ाकों ने कुछ वक्त के लिए एक सरकारी अस्पताल पर भी कब्जा कर लिया। सोशल मीडिया में आई तस्वीरों में चरमपंथी अस्पताल में सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं। चरमपंथियों ने कुछ इमारतों में भी आग लगा दी। कुंदुज पुलिस के प्रवक्ता ने दावा किया कि संघर्ष में 20 चरमपंथी मारे गए हैं। अफगान सुरक्षा बलों को हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस प्रवक्ता कासिम बाग ने कहा, हमारी अफगान सेना दुश्मनों का मुकाबला कर रही है। खून के आखिरी कतरे तक हम अपने इलाके की हिफाजत करेंगे और हमें भरोसा है कि वो कुछ भी हासिल करने में कामयाब नहीं होंगे। ये थे पुलिस प्रवक्ता के शब्द। अफगानिस्तान सरकार का कहना है कि उसने और अधिक सैनिकों को कुंदुज भेजा है। अधिकारियों का कहना है कि जबरदस्त संघर्ष की वजह से शहर की सड़कें बंद हैं और लोग घर छोड़कर रास्तों पर आ गए हैं। कुंदुज में स्थानीय एमपी फातिमा अजीज ने कहा कि सरकार तालिबान के हमले से अचंभित है। उन्होंने कहा,
बहुत जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। ज्यादातर लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। महिलाओं और बच्चों समेत हर कोई सड़क पर है और वो नहीं जानते कि सुरक्षित रहने के लिए कहाँ जाएं। रास्ते चार तरफ से बंद हैं। खेद की बात यह है कि कुंदुज प्रांत के गवर्नर प्रांत में नहीं है। इससे लोगों के हौसले पर असर पड़ा है।
ये थे फातिमा अजीज के शब्द। स्थानीय लोग सोशल मीडिया पर हालात की जानकारी दे रहे हैं। शहर में रहने वाले हमीदुल्ला ने हालात की जानकारी देते हुए कहा,
در چهار دروازه کندوز مخالفین نزدیک هست در یک قریه کندوز که خارج از چارچوب که کندوز
چرمپنتی کندوز میں داخل ہونے کے چاروں راستوں کے قریب ہیں کندوز پرانت میں کوئی بھی کسی بھی گاؤں میں نہیں جا پا رہا ہے کیونکہ ان سب پر چرمپنتیوں کا قبضہ ہے یہ تھے استھانیہ نواسی حمید اللہ کے شبد کندوز رنڈیتک لحاظ سے اہم ہے یہاں سے گزرنے والی سڑکیں راجدھانی کابل سمیت مدھیہ اور اتری افغانستان کو جوڑتی ہیں कुंदुज का तालिबान के लिए भी अहम सांकेतिक महत्व है। साल 2001 में तालिबान सरकार हटाए जाने के पहले ये उत्तर में उनका गढ़ माना जाता था। कुंदुज में अप्रैल से हमले बढ़ गए हैं। बीते साल अमेरिका और नाटो की सेनाओं की रवानगी के बाद से अफगानिस्तान में चरमपंथी हमलों की संख्या में इजाफा हुआ है।
तालिबान का अफगानिस्तान के कुंदुज शहर के कुछ हिस्से पर कब्जा।
देश दुनिया की खबरें 2400 घंटे bbchindi.com के साथ।
असम की बराक वैली के 3 जिलों में बीते शुक्रवार से जारी तनाव के बीच आज विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने बंद बुलाया है। कछार, करीमगंज और हेलाकांदी के शहरी इलाकों में बंद प्रभावी रहा। भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और पुलिस प्रशासन पर इस मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं आईजी पुलिस LR बिश्नोई ने कहा कि पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। ज्यादा जानकारी के साथ स्थानीय पत्रकार दिलीप कुमार शर्मा।
असम के धुबरी और कछार जिले में पिछले शुक्रवार से सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ है। इस सांप्रदायिक तनाव के कारण विरोध कर रही भाजपा ने सोमवार सुबह 5 बजे से बराक वैली के 3 जिलों कछार, करीमगंज और हेलाकंदी में बंद बुलाया था। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है और पुलिस भी अपने तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने कहा,
असम सरकार जो है इस इश्यूज पे कोई उनका अलर्टनेस नहीं दिखा और हम ये एकदम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सरकार के गफलतबाजी के कारण से ऐसा माहौल पैदा हुआ है। कम्युनल वायलेंस की तरफ जो असम जा रहा है उसमें जो है कांग्रेस को हम सीधे आरोपित करते हैं कि कांग्रेस के नासमझी की वजह से उनके नो अलर्टनेस, उनका कोई अलर्टनेस नहीं था। और दूसरा मुद्दा यह है कि उनके जो ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वह जो है डिप्लोमेट नहीं है, टैक्टफुल नहीं है।
इधर पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। IGP LR बिश्नोई धुबरी के दौरे पर है और उन्होंने संवेदनशील इलाकों का दौरा किया है। धुबरी के पुलिस अधीक्षक को उन्होंने निर्देश दिया है कि वो मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपे। IGP बिश्नोई ने कहा,
ये घटनाएं तो फिर दूसरे कारण कोई वो मास्क फेंकना उससे हुई है, तो उसमें कोई अलग टाइप के मोटिव हो सकते हैं। वो मैं अभी SP धुबरी को बोल के आया हूँ, भाई अच्छे से मैटर थोरोली इन्वेस्टिगेट करके इसको बताऊंगा।
बंद के कारण करीमगंज, सिलचर और हेलाकांदी के जो शहरी इलाके हैं वो पूरी तरह से प्रभावित रहे। आम लोगों का जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया। गुवाहाटी से सिलचर जो रात्रि सेवा के लिए बसें चलती थी वो सारे बंद रही। जिला प्रशासन के अधिकतर कार्यालय बंद रहे। बंद को लेकर जो परेशानी हुई के बारे में स्थानीय व्यक्ति दिलीप कुमार सिंह ने कहा,
वहन बंद कर वजह से आम पब्लिक हमेशा ही परेशानी का सामना करना पड़ता है और खास करके गुवाहाटी और सिलचर के बीच जो सुबह का नाइट सुपर या आते हैं उसका पैसेंजर आके अटक जाते हैं। इसके चलते भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरह का जो रोजमर्रा का जिंदगी है वो तो पूरा ठप हो गया था आज। और खास करके गरीब आदमी जो है टोली लगाते हैं, छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, उन लोगों का दुकान जो है अभी खुल नहीं पाया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार धुबरी में जो कर्फ्यू लगाया गया था वो सोमवार को हटा लिया गया है। अभी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। अर्ध सुरक्षा बलों के जवानों को भी संवेदनशील इलाकों में तैनात कर रखा है और पूरी स्थिति पे नजर रखी जा रही है।
ये थे गुवाहाटी से स्थानीय पत्रकार दिलीप कुमार शर्मा। उधर खबरें आ रही हैं कि असम के कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में कई लोगों से भरी एक नाव पलट गई है। कुछ लोग बच निकलने में भी सफल हो गए हैं। आइए सीधे चलते हैं गुवाहाटी दिलीप कुमार शर्मा के पास एक बार फिर। दिलीप, बताइए क्या विवरण है आपके पास इस दुर्घटना के बारे में?
ये कामरूप ग्रामीण जिले में जो नाव दुर्घटना की घटना हुई है ये करीब 12:30 बजे के समय हुई है, दिन के करीब 12:30 बजे। अभी तक पुलिस प्रशासन से मेरी बात हुई है, जिला अधीक्षक से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अभी तक वे NDRF और SDRF के साथ पुलिस की टीम वहां बचाव कार्य में लगी हुई है। अभी तक कोई शव बरामद नहीं हुआ है और अभी तक किसी भी व्यक्ति के घर से कोई रिपोर्ट नहीं की गई है कि कोई लापता होने की रिपोर्ट नहीं की गई है। ऐसे बताया जा रहा है कि ये जो नाव है गोरेमारी से ये नौका दौड़ देखने के लिए जा रहे थे। इसमें स्थानीय लोगों का ही कहना है क्योंकि पुलिस अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रही है कि नाव में कितने लोग थे, लेकिन जहां ये दुर्घटना हुई वहां स्थानीय लोगों से बात हुई है। उनका कहना है कि नाव में क्षमता से अधिक लोग थे और जब नाव नदी से गुजर रही थी तो वहां ये कलई नदी का कहते हैं इसे, कलई नदी के ऊपर एक काठ का पुल बना हुआ था। नाव संतुलन खो बैठी और पुल से टकरा गई। टकराने के बाद नाव वहां पलट गई और ये स्थानीय लोगों का ही कहना है कि कुछ लोग वहां तैर कर अपनी जान बचा लिए, लेकिन अभी भी 50 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। जबकि पुलिस अधीक्षक इंद्राणी बरुआ से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि दुर्घटना की खबर मिलने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां बचाव कार्य में जुट गई है। नाव का एक हिस्सा टूटा हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ एक हिस्सा बाहर भी निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई शव नहीं मिला है। किसी भी लापता हुए व्यक्ति की कोई रिपोर्ट नहीं हुई, इसलिए अभी वह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि इस नाव दुर्घटना में कितने लोग मारे गए हैं और या फिर कितने लोग लापता हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिलीप कुमार शर्मा। ये बीबीसी है, आप दिन भर कार्यक्रम सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के इरादे से भारत ने पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट का असफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया। खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए एस्ट्रोसैट के प्रक्षेपण के साथ ही भारत अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। पीएसएलवी C-30 रॉकेट के जरिए छोड़ा गया एस्ट्रोसैट अपने साथ 6 विदेशी उपग्रह भी ले गया है, इनमें से 4 अमरीकी सैटेलाइट हैं। ये पहली बार है जब भारत ने अमरीकी सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया है। हमारे साथी सलमान रावी ने वैज्ञानिक मामलों के जानकार पल्लव बागला से इस मामले में बात की और पूछा कि ये प्रक्षेपण भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
देखिए, आज भारत ने इतिहास रचा, पहली बारी एक स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट हिंदुस्तान ने लॉन्च किया। हिंदुस्तान अब अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान के बाद चौथा ऐसा देश बन जाता है जिसके पास अपना एक एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट अंतरिक्ष में है। आज की जो लॉन्च थी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, वो भी बड़ी ऐतिहासिक थी क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चे और भी छोड़े गए और उनमें से 4 बच्चे जो थे वो अमेरिका के सैटेलाइट थे। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले तक अमेरिका जो था वो हिंदुस्तान के ऊपर पाबंदी लगाता था, टेक्नोलॉजी डिनायल करता था, सैंक्शंस लगा रखी थी, लेकिन अब पूरी दुनिया का चक्कर जो है वो वापस घूम के घड़ी उसी जगह आ गई जहां होनी चाहिए थी। अब अमेरिका जो है अपने सैटेलाइट हिंदुस्तान के रॉकेट से भेज रहा है। जब प्रधानमंत्री खुद सैन फ्रांसिस्को में थे और डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे, उसी वक्त हिंदुस्तान की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने 4 सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी स्पायर के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे।
ये सिंगल मिशन था जिसमें इतने सारे लॉन्च हुए हैं, ये पहली बार शायद हुआ होगा ये, या तीसरी बार या चौथी बार है पता नहीं।
पहली बार ही हुआ है, हिंदुस्तान ने कई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। 5 जो थे, 4 अमेरिकी, 1 कैनेडियन और 1 इंडोनेशियन सैटेलाइट और 1 बड़ा जो हिंदुस्तान का अपना एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट था। एक बार हिंदुस्तान ने पहले 10 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में लॉन्च किए थे, तो ये हिंदुस्तान ने कई बार किया है। लेकिन आज का जो
तो सर वो अमेरिका के हबल के बराबर इसकी तुलना की जा सकती है क्या एस्ट्रोसैट की?
देखिए, टेलीस्कोप जो है वो एक जैसे होते हैं, हबल जो है वो एक फ्रीक्वेंसी में देखता है, हिंदुस्तान का ये कई फ्रीक्वेंसी कई वेवलेंथ में देख सकता है। हबल जो है वो बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, हिंदुस्तान का जो ये एस्ट्रोसैट है इसको मैं कह रहा हूँ टर्बोचार्ज मिनी हबल टेलीस्कोप है ये, क्योंकि कई वेवलेंथ देख सकता है और ये एक बारी में इस तरह से यूनिवर्स को देखेगा, किस तरह से स्टार्स पैदा होते हैं, किस तरह से स्टार्स डाई होते हैं, ब्लैक होल्स क्या होते हैं और किस तरह से यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है, उसके ऊपर ये ज्यादा विज्ञान की जानकारी दे पाएगा।
तो खास तौर पे जब बात की जाती है कि ये जो नैनो सैटेलाइट्स भी इसमें लॉन्च किए गए, इंडोनेशिया भी था शायद जिसका लॉन्च किया गया,
इंडोनेशिया के भी सैटेलाइट थे। ये छोटे छोटे सैटेलाइट हैं जैसे स्कूल बस से छोड़ा जाता है, इनको एक के बाद एक इन बच्चों को अपनी अपनी सही जगह पे उतारा गया और सारे सैटेलाइट जो है वो अपनी सही कक्षा में पहुंच गए हैं। अभी
उसके बाद फिर ये कैसे काम शुरू करते हैं ये अपना, कि वहां से तस्वीरें भेजते हैं और किस तरह से करते हैं?
एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट जो है वो हिंदुस्तान का अपना है और वो हिंदुस्तान की तरफ से यूनिवर्स को स्टडी करेगा। इनका एक स्पेसिफिक हर किसी का रोल है, कोई फोटो खींच रहा है, कोई शिप की मॉनिटरिंग कर रहा है, कोई अलग अलग तरह की अर्थ बेस्ड मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ज्यादातर ये टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट होते हैं। छोटे छोटे सैटेलाइट हैं, कम लागत से बनते हैं, स्टार्टअप कंपनीज बना रही हैं, जैसे ये सैन फ्रांसिस्को की स्टार्टअप कंपनी है स्पायर जिसने लेमूर सैटेलाइट बनाए हैं। अब ये अपना काम शुरू करेंगे और कुछ ही हफ्ते और कुछ महीनों में अपना काम पूरा करके जो डेटा है वो अर्थ पे भेजेंगे और उसको एनालाइज किया जाएगा। और हिंदुस्तान का जो एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है वो अगले 5 साल तक काम करेगा और हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को अपनी जो जो खोज करेगा उसकी खबर देगा। तो कुल मिला के 7 सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने अपनी 31वीं लॉन्च में, जो कि अब वो 30वीं लगातार कंसेक्यूटिवली सक्सेसफुल लॉन्च हो गई, उसमें लॉन्च हुए।
पल्लव बागला से बातचीत कर रहे थे सलमान रावी। आज सोमवार है और आपको इंतजार होगा आपके पत्रों का। आज आपके पत्रों के साथ हैं इंदु पांडे और राजेश प्रियदर्शी।
आपकी चिट्ठी, आपके ईमेल्स और आपकी राय के साथ एक बार मैं हूँ फिर से इंदु पांडे।
नमस्कार, राजेश प्रियदर्शी की ओर से।
तो राजेश जी, चलिए चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करते हैं। और हमारे पास ये बबन सिंह का मेल आया है। कहते हैं कि विनीत खरे द्वारा प्रसारित कार्यक्रम नमस्कार भारत इस बार का बहुत ही खराब लगा इनको।
क्या खराब लगा?
ये नहीं लिखा, बस इन्होंने ये लिखा है कि आप ये जरूर सोचिए कि आपके लिए नहीं, ये हमारे लिए है बीबीसी।
बबन जी, आपकी बात हम विनीत जी तक तो पहुंचा देंगे, लेकिन जाहिर है कि वो भी जानना चाहेंगे और हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात थी पूरे अफसाने में जो आपको इतनी नागवार गुजरी है। ज़रा बताइए विस्तार से, अगली बार चिट्ठी लिखिएगा तो हमें ज़रूर बताइएगा अपनी पसंद नापसंद दोनों के बारे में कि क्या और क्यों अच्छा या बुरा लगा।
और रेहान फजल जी द्वारा भारत पाकिस्तान के 1965 के जंग की जो सीरीज़ चल रही है उसके लिए बहुत सारी चिट्ठियां हमारे पास आई हैं। ये मेल है सुरेंद्र नाथ सिंह का नागांव आसाम से। कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया इस लाजवाब कार्यक्रम के लिए। साथ में जगत सिंह धामी हैं और पिथौरागढ़ उत्तराखंड से गिरिराज मीणा हैं और इसके साथ हैं सुनथार फलसुड़े जैसलमेर से। इन सब को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है।
आप सब लोगों को जिन्होंने पत्र लिखा और जिन्होंने नहीं भी लिखा लेकिन कार्यक्रम को पसंद किया, उन सब का शुक्रिया। और साथ ही हमको, हम आपको ये भी बता दें कि bbchindi.com पर, यानी हमारी वेबसाइट पर, ये 2200 एपिसोड पूरे के पूरे आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उनको पढ़ भी सकते हैं।
और हमारे पास ये मेल आया है दिल्ली से नवीन शर्मा का। ये थोड़े से नाराज़ दिखते हैं। कहते हैं कि 26 तारीख की शाम को बीबीसी हिंदी द्वारा प्रोग्राम इंडिया बोल प्रसारित किया गया, जिसे रेहान फजल जी ने प्रोग्राम प्रस्तुत किया था और इन्होंने बहुत सारी गलतियां निकाली हैं। कहते हैं कि जो बातें हो रही थीं वो सारी की सारी बातें जो आपका टॉपिक था उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थी।
बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी अभी इतने सारे लोगों ने रेहान फजल साहब की तारीफ की और फिर अब ये चिट्ठी है जिसमें उनकी शिकायत की गई है। कार्यक्रम में अक्सर दो तीन परेशानियां होती हैं इंडिया बोल में। वो ये है कि लोग जो कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे होते हैं उनको नियंत्रित करना, उनको विषय पर बनाए रखना एक बहुत गंभीर चुनौती होती है। और कई बार ऐसा होता है, हम खुद भी महसूस करते हैं कि लोग जो सवाल पूछने वाले लोग हैं वो कई बार विषय से भटक जाते हैं और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता के तौर पर रेहान साहब की या जो भी प्रस्तुत कर रहा हो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो चर्चा को लौटाकर विषय पर लाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ या आपको ऐसा महसूस हुआ तो इसका हमें अफसोस है।
और ये अनुरोध भी करते हैं, कहते हैं कि जब कभी आप मेहमानों को प्रोग्राम के लिए चुनें तो किसी भी पक्ष के दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चुनें।
जी, हम कोशिश यही करते हैं कि या तो दो मेहमान हों जो दो अलग अलग पक्षों को का प्रतिनिधित्व कर रहे हों, या फिर अगर एक व्यक्ति हो तो हम कोशिश करते हैं कि वो किसी एक पक्ष का ना होकर एक निष्पक्ष व्यक्ति हो जो दोनों तरफ की बातें सामने रख सके।
और इसी संबंध में और जो हमारे पास मेल आई थी वो है शिवम शुक्ल सिद्धि मध्य प्रदेश से और सत्यप्रकाश शुक्ला फैजाबाद से।
और उनको क्या कार्यक्रम पसंद आया, नहीं पसंद आया, क्या हुआ?
नहीं, इसी संबंध में नवीन शर्मा ने जो बात की थी कि जो भी बात होती है प्रोग्राम में तो पक्ष जो जिस पे आप बात करते हैं उसी के ऊपर बात करनी चाहिए।
ये बड़ा अच्छा मौका है उन सभी लोगों के लिए, अगर आप ये कार्यक्रम सुन रहे हो, जो लोग इंडिया बोल कार्यक्रम में हमें फ़ोन करते हैं। देखिए, ऐसी शिकायतें आती हैं जब आप विषय के अनुरूप सवाल नहीं पूछते, तो ये उनके लिए भी संदेश है कि कृपया विषय पर बने रहें और ऐसे ही सवाल पूछें जो प्रासंगिक हों उस कार्यक्रम के लिए।
इन्होंने बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखा है, लिखते हैं कि क्या आरक्षण पर विचार करने का समय आ गया है, परंतु आपने अपने प्रोग्राम में कोई भी मेहमान आरक्षण के विरोध में पक्ष रखने के लिए नहीं बुलाया था और आपने ऐसा क्यों किया?
इसकी कई वजह हो सकती है, लेकिन इनकी जो शिकायत है वो हमने सुनी और महसूस किया कि जब भी हम ये कार्यक्रम करते हैं तो शायद हमें और एहतियात बरतने की जरूरत है।
और मेल है ये आलोक का पोस्ट घरवारा से। लिखते हैं कि जब कोई भी बदलाव आप बीबीसी में करते हैं तो कम से कम श्रोता बनकर एक बार जरूर सोचें।
हम जो भी कार्यक्रम करते हैं उसको अगर उसमें हम कोई फेर बदल करते हैं या कुछ नया शुरू करते हैं तो हम ये ज़रूर करते हैं कि उसके जिसको हम कहते हैं कम से कम 3 या 4 बार प्रैक्टिस रन या ड्राई रन कहते हैं उसको हम बहुत सारे लोगों को सुनवाते हैं, खुद भी हम श्रोताओं की तरह उस कार्यक्रम को बिल्कुल निष्पक्ष होकर सुनते हैं और उसके बाद हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि आपको पसंद आएगा या नहीं। और अक्सर होता है कि बहुत सारे लोगों को कार्यक्रम पसंद आता है, बहुत सारे लोगों को कार्यक्रम पसंद नहीं आता, लेकिन हम ज़रूर ये कोशिश करते हैं ये समझने की कि जो सुनने वाला है उसको सुनकर कैसा लगेगा।
और आलोक का एक सुझाव भी है कि बीबीसी हिंदी पर प्रकाशित करना क्या संभव है हमारी चिट्ठियों को?
जो चिट्ठियां हैं उसके लिए सबसे अच्छा मंच, जो लोगों की राय है उसके लिए सबसे अच्छा मंच हमारा फेसबुक का पन्ना है, जहां पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं कार्यक्रमों के बारे में, हमारी वेबसाइट के बारे में, और वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों की राय हम मिनट दर मिनट वो जैसे आती रहती हम प्रकाशित करते रहते हैं।
तो अब आपकी राय का पता बता दें।
जी बिल्कुल, आपकी राय बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk। तो आपकी राय में इतना ही। इंदु पांडे को और मुझे राजेश प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
आपके पत्र और अब एक नजर आज के खेल समाचारों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। दक्षिण अफ्रीकी टीम अपने क्रिकेट इतिहास में पहली बार सबसे लंबे दौरे पर कल भारत पहुंची। उल्लेखनीय है कि दक्षिण अफ्रीकी टीम अपने 72 दिन के दौरे में 3 2020, 5 एक दिवसीय और 4 टेस्ट मैच खेलेगी। आधिकारिक रूप से दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच पहले 3 मैचों की 2020 सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 2 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में होगा। इससे पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम कल दिल्ली के पालम एयरफोर्स मैदान में भारत ए के खिलाफ 2020 अभ्यास मैच खेलेगी। दक्षिण अफ्रीका ने भारत दौरे के लिए 2020 टीम की कमान फेफ डू प्लेसिस, एक दिवसीय टीम की कमान एबी डिविलियर्स और टेस्ट टीम की कमान हाशिम आमला को सौंपी है। 2020 टीम में दक्षिण अफ्रीका के पास कप्तान फेफ डू प्लेसिस के अलावा हाशिम आमला, क्विंटन डिकॉक, एबी डिविलियर्स, जेपी डुमिनी और इमरान ताहिर जैसे जाने पहचाने नाम शामिल हैं। दूसरी तरफ भारत ए में कप्तान मनदीप सिंह के अलावा मयंक अग्रवाल, मनीष पांडे, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सभी भारतीय खिलाड़ी बेंगलोर में अभ्यास कैंप में व्यस्त हो, बल्कि शिखर धवन तो बांग्लादेश ए के खिलाफ भारत ए के कप्तान के रूप में अपने हाथ खोल रहे हैं और वो आज 3 दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन 150 रन बनाकर पेविलियन लौटे। उनके अलावा विजय शंकर ने 86 और करुण नायर ने 71 रन बनाए। जब भारत ए का स्कोर 5 विकेट पर 411 रन पहुंचा तब शिखर धवन ने पारी समाप्ति का ऐलान कर दिया। तब तक पहली पारी के आधार पर भारत ए को 183 रनों की बढ़त मिल चुकी थी। इसके बाद आज खेल समाप्त होने के समय बांग्लादेश ए ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 36 रन बनाए। तो अभ्यास मैच का शिखर धवन ने जमकर फायदा उठाया और अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित की। उधर भारत के डेविस कप खिलाड़ी युकी भामरी भले ही पिछले दिनों ताइवान में ATP चैलेंजर के फाइनल में हार गए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रैंकिंग में 21 पायदान का लाभ मिला और वे 104वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ये उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। ताइवान में उन्होंने सेमीफाइनल में 40वें नंबर के खिलाड़ी चेक गणराज्य के जिरी वेसेली को हराया। युकी को कुल 75 अंक मिले। भारत के सोमदेव देव वर्मन 171वें पायदान पर खिसक गए हैं। वहीं भारत के मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी प्राग बैडमिंटन ओपन के पुरुष युगल वर्ग के फाइनल में हार गई।
अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। न्यूयॉर्क में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। इस द्विपक्षीय मुलाकात में चरमपंथ से निपटने के अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। असम के कामरूप जिले में कोलोही नदी में हुए एक नाव हादसे में कई लोगों के डूबने की आशंका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाव में सवार लोगों की संख्या 120 से ज्यादा थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ सीरिया से जुड़े अपने प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। रूस का प्रस्ताव है कि सीरिया पर एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क समूह बनाया जाए। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटनाचक्र में। तब तक खबरें देखनी हैं तो आइए bbchindi.com पर। स्टूडियो संभाला था हेमंत कुशवाहा ने। सभी साथियों के साथ रेहान फजल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।